मलाखी अध्याय दो। अब वो याजकों को संबोधित कर रहा है। मलाखी अध्याय दो पद एक और दो। और अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। मलाखी की पृष्ठभूमि समझने के लिए एज़रा और नहमिया की पुस्तकों को भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही समय भविष्यवाणी कर रहे थे। ये वो समय था जब इसराइल के वंशज बाबुल के दासत्व से लौट आए थे और अपने राष्ट्र का पुनस्थापन कर रहे थे। हमने ये भी देखा है कि उनके सामने व्यवस्था पड़ी गई थी और उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को त्याग कर अश्दोद, अमोन और मोआब की स्त्रियों से विवाह कर लिया था। मलाखी भी इसका उल्लेख करेगा। परंतु यदि आप एज़रा और नहमिया की पुस्तकें पढ़ेंगे तो मलाखी की भविष्यवाणी समझना आसान होगा। मलाखी अध्याय दो पद तीन। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठकर फेंक दिए जाओगे। सावधान, परमेश्वर की दया व्यर्थ ना हो। मलाखी अध्याय दो पद चार और पांच। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको ये आज्ञा इसलिए दिलाई है कि लेवी के साथ मेरी बांधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मेरी जो वाचा उसके साथ बांधी थी वो जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वो भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। परमेश्वर ने लेवी के गोत्र से वाचा बांधी थी क्योंकि लेवी परमेश्वर का भय मानता था और उसका मन परमेश्वर के लिए श्रद्धा से भरा हुआ था। ये वाचा शांति और जीवन की वाचा थी। परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन और अपनी शांति की प्रतिज्ञा दी है जो मानवीय समझ से परे है। परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के कारण हमें ये लाभ प्राप्त होते हैं। लेवी के मन में परमेश्वर की पवित्रता के लिए गहरा स्थान था, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ ये वाचा बांधी थी। मलाखी अध्याय दो पद छे। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वो शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। निस्संदेह ये याजक का कर्तव्य था कि वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता, खराई और शांति के साथ चले। मलाखी अध्याय दो पद सात। क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने ओंठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। सच्ची सेवा यही है कि मनुष्य को परमेश्वर के ज्ञान से भर दिया जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के संदेश वाहक है। यही कारण है कि हम सेवकगण यहां खड़े होते हैं और आपको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। इसलिए जब भी सेवक प्रचार मंच पर खड़ा हो, उसकी ये एक ही मनोकामना या चिंता का विषय होना चाहिए, मेरे पास आपके लिए परमेश्वर का संदेश है। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। कलीसिया के साथ संपर्क का एकमात्र माध्यम यही होना चाहिए। परमेश्वर अपने सेवक के माध्यम से अपना वचन और अपना सत्य अपने लोगों तक पहुंचाता है। मलाकी अध्याय 2:8, परंतु तुम लोग ये याजकों के लिए धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आज की अनेक सेवकाइयों के लिए परमेश्वर का ये वचन सत्य सिद्ध होता है। मेरे मन में उन पास्टर जनों के लिए आदर नहीं है जो परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, जो परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता का इनकार करते हैं। मैं नहीं जानता वे सेवा में क्यों सहभागी हैं। उन्होंने अपने पद को भ्रष्ट कर दिया है। उन्होंने लोगों को प्रभु के मार्ग से पथ भ्रष्ट कर दिया है। आज कितने विश्वासी हैं जो आराधनाओं में उपस्थित नहीं होते और पास्टर का घर आना पसंद नहीं करते। इसका एकमात्र कारण है कि पास्टर कलीसिया में उन्हें परमेश्वर के सत्य का ज्ञान नहीं देते। आज कलीसियाएं सामुदायिक भवन बन गई है और पास्टर समाज सेवक संस्थाओं के अध्यक्ष है। उन्होंने समाज सेवा पर बल देना आरंभ कर दिया है। उनके संदेश या तो किसी विख्यात लेखक की पुस्तक के सारांश होते हैं या चिड़ियों के, फूलों के या तितलियों के वर्णन के होते हैं। उनके उपदेशों में कलीसिया के लिए परमेश्वर का संदेश कम ही होता है। मनुष्य का परमेश्वर से दूर हो जाने का मुख्य कारण उस समय के याजकों या आज के पास्टर गण की विफलताओं का परिणाम था और है। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी अध्याय 2:9, इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है। परिणाम स्वरूप इसराइल की जनता ने याजकों का सम्मान करना छोड़ दिया था। वे उनको तुच्छ जानने लगे थे और मेरे विचार में वे ठीक ही करते थे। हमने सुना है कि ब्राजील में लोग पास्टरों के विरुद्ध हो गए। इसमें कलीसिया का दोष नहीं है, दोष तो वास्तव में पास्टरों का है जो निंदा के काम करते हैं और उन्हें परमेश्वर के सत्य में और उसके वचन के प्रकाशन में नहीं लाते, अपितु उन पर कोई ना कोई समाज सेवा का काम थोप देता है। समाज सेवा का अलग स्थान होता है। चर्च वो स्थान है जहां परमेश्वर के सत्य का प्रचार होता है। ज्योतिर्मय लोग ही समाज को ज्योतिर्मय कर सकते हैं। इसलिए मैंने तुमको भी सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है। मलाकी अध्याय 2:9-10, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? काश कलीसिया के समस्त वर्ग ये जान ले कि हमारा एक ही पिता है, हम एक ही परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्रभु की कलीसिया के इतने भाग करने की क्या आवश्यकता है? एक कलीसियाई वर्ग दूसरे कलीसियाई वर्ग को गिराने के प्रयास में क्यों लगा रहता है? प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, डह, क्लह आदि क्यों मसीह की देह में चलते हैं? प्रभु हमारी सहायता करे, हम एक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यह यदि हम बैप्टिस्ट हैं या लूदरन हैं या प्रेस्बिटेरियन हैं या कैथलिक, नैजरीन या जो भी हो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम केवल विश्वासी हो। एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, हम सब तो भाई हैं। परमेश्वर कहता है वे इस सच्चाई को समझते क्यों नहीं? उनमें ऐसा विश्वासघात क्यों है, प्रतिस्पर्धा क्यों है? मलाखी अध्याय 2:11। यहूदा ने विश्वासघात किया है और इसराइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराए देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। यहूदा के वंशज जो राष्ट्र के पुनर्स्थापन के लिए लौट आए थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को त्याग कर अश्दोद की स्त्रियों से विवाह कर लिया था। ये अमोनी पिलिस्ती स्त्रियां थी। ये क्षेत्र आज जॉर्डन देश के नाम से जाना जाता है। ये स्त्रियां ना तो यहोवा को जानती थी और ना ही परमेश्वर की वाचा को समझती थी। इसी कारण इन पुरुषों को विश्वासघाती कहा गया है। जब नहमिया ने ये देखा, तब उसने इन सब पुरुषों को, जिन्होंने अपनी जवानी की साथी पत्नियों को त्याग दिया था और उन युवतियों से विवाह करके संतान उत्पन्न की थी, नहमिया ने उन सब पुरुषों को एकत्रित किया और झिड़का तथा आदेश दिया, इन अन्य जाति स्त्रियों को और उनकी संतान को त्याग दो। वो उनकी दाढ़ी पकड़ पकड़ कर उनके सिर पर मारता था। नहमिया के अंतिम अध्याय में देखने को मिलता है कि वो परमेश्वर के समक्ष ऐसे घृणित कामों का घोर विरोध कर रहा था। युवावस्था पार करने के बाद अपने जीवन साथी के साथ ऐसा पीड़ादायक व्यवहार करना, मलाखी अध्याय 2:12-13। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर, उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहां तक कि वो तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? तुम्हारा रोना धोना तुम्हारे किए गए कुकर्मों को मिटा नहीं सकता। तुम्हारे आंसू परमेश्वर को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे, मलाखी अध्याय 2:14। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिसका तूने विश्वासघात किया है। वे विवाह में वाचा बांधते थे, हम भी बांधते हैं, जब तक मौत जुदा ना करे। अपनी वाचा की पत्नी का त्याग नहीं करेंगे, मलाखी अध्याय 2:15। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर इसराइल में एक आत्मिक वंश को सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि उस वंश के द्वारा अपने पुत्र को इस संसार में ला सके। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वे अपनी जाति से बाहर विवाह ना करें। मलाकी अध्याय 2:15 का अंतिम भाग, परमेश्वर ने कहा, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल अंतरजातीय विवाह के विरुद्ध साक्षी देती है, परंतु सच तो यह है कि ऐसा नहीं है। ये आज्ञा यहूदियों को दी गई थी क्योंकि परमेश्वर इस जाति से मसीहा को लाने वाला था, इसलिए उसे ईश्वरीय वंशावली को सुरक्षित रखना था। परंतु यथार्थ में धर्मशास्त्र अंतरजातीय विवाह का विरोध नहीं करता है। फिर से बात वही आ जाती है कि हम एक पिता की संतान हैं और एक ही परमेश्वर की सेवा करते हैं। संस्कृतियों के आधार पर कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है, परंतु धर्मशास्त्र में मैं ऐसा कुछ नहीं देखता हूं। मलाखी अध्याय 2:16। क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहां परमेश्वर तलाक के विरुद्ध खड़ा है। परमेश्वर ने कहा, मैं इसे घृणा करता हूं। प्रभु ने कहा कि तलाक के लिए एकमात्र वैध कारण है व्यभिचार। परमेश्वर आगे कहता है, मलाखी अध्याय 2:17, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वो ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और ये कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भले हैं। हर एक में कहीं न कहीं भलाई अवश्य पाई जाती है। परमेश्वर ने कहा, तुमने अपनी बातों से मुझे उकता दिया। परमेश्वर के समक्ष सब अच्छे हैं। आज ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, और ये भी कहते हैं परमेश्वर मनुष्यों से प्रसन्न रहता है। ऐसा है तो परमेश्वर किसे दंड देगा? परमेश्वर दुष्ट को दंड देगा, और वो इस झूठी धारणा से उकता गया है। ओह, सब अच्छे हैं, परमेश्वर मनुष्यों से प्रसन्न है। परमेश्वर का सर्वभौमिक पिता होना और मनुष्यों का परस्पर भाईचारा, आपने कुछ भी किया हो, आप कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में सब धर्मी हैं। अब न्यायी परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर उस धन के विषय इतना अधिक क्यों कहता है जो दुष्ट को दिया जाएगा?